चलिए अगला टॉपिक छोटा सा ये वो देखते हैं। अहमियतुल निकाह, निकाह की अहमियत, फर्क क्या है, फजीलत, बेनिफिट्स, फायदे क्या है और यहाँ क्या इंपॉर्टेंस। आप इंग्लिश में साथ साथ इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, पहले क्या था बेनिफिट्स ऑफ निकाह और अब क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ निकाह। निकाह न करने वाला निकाह की सुन्नत के अजर और सवाब से महरूम रहता है। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद सहाबा ने अजवाजे मुतहरात से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुफिया इबादत का हाल पूछा, यानी कि तन्हाई में घर आके क्या पढ़ते थे या सुन्नत नमाजें कैसी, सुन्नत इबादत कैसी थी, क्योंकि ये तो घर वाले ही जानते हैं ना। आप देखिए कि हम बाहर होते हैं तो लोग हमारी फर्ज इबादत देखेंगे ना, मतलब नमाज हुई आपने फर्ज पढ़े, और सुन्नत तरीका यह है कि सुन्नतें और नफिल दूसरों के सामने ना पढ़ें, अलग पढ़ें, क्योंकि उससे रियाकारी का भी एक शाइबा आ जाता है। तो घर के अंदर रहने वाला आपकी इबादत को ज्यादा समझता है, तो लोग शौक में पूछते थे, ये नहीं कि कोई टो ले रहे थे बल्कि अपने अमल के लिए पूछते थे। इनमें से एक ने कहा कि मैं औरतों से निकाह नहीं करूंगा, यानी नेकी के तौर पे कि निकाह कर लिया फिर बीवी के हकूक देने पड़ेंगे तो मैं उस वक्त में भी इबादत करूंगा। किसी ने कहा मैं गोश्त नहीं खाऊंगा, किसी ने कहा मैं बिस्तर पर नहीं सोऊंगा, क्योंकि बिस्तर पर सोऊंगा तो नींद गहरी आएगी तो मैं रात को इबादत के लिए नहीं उठ सकूंगा। गोश्त ना खाने की बात क्यों कही, क्योंकि गोश्त से इश्तिहा बढ़ती है, यानी जो लोग गोश्त खाते हैं ना उनमें सेक्सुअल पावर बहुत ज्यादा होती है, तो इस वजह से कहा कि इस चीज से परहेज करूंगा, लाइट फूड खाऊंगा, मेरे जिस्म में जज्बात ऐसे नहीं, दिल में जज्बात नहीं आएंगे तो मुझे इबादत का ज्यादा मौका मिलेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आपने अल्लाह ताला की हमदो सना की और फरमाया इन लोगों को क्या हुआ है। ये नोट कीजिएगा अल्लाह के नबी का नसीहत का अंदाज कितना प्यारा है, मा बालु अक्वामिन, यानी ये इनडायरेक्ट स्टाइल है। हम तो डायरेक्ट टॉन्ट करते हैं ना, किसी को देखा कोई गलत काम करते हैं, कुछ गलत चीज पहने, जाके छट से उसको कह दिया ये क्या पहना हुआ है, ये क्या किया हुआ है, ये सुन्नत तरीका नहीं है। इनडायरेक्ट बात करते थे थर्ड पर्सन में, तो कहा मा बालु अक्वामिन, लोगों को क्या हो गया है जिन्होंने ऐसी और ऐसी बातें कही, हालांकि आपको पता था ना किन्होंने की है तो आपने उनके नाम नहीं लिए, ऐसी बातें कही और जबकि मैं रात को नवाफिल पढ़ता भी हूँ और सोता भी हूँ, यानी कुछ हिस्सा रात का सोता हूँ कुछ हिस्सा इबादत में गुजारता हूँ, नफली रोजा रखता हूँ, तर्क भी करता हूँ और औरतों से निकाह भी करता हूँ, बस जो शख्स मेरे तरीके से मुंह मोड़ेगा वो मुझसे नहीं, फमन रगीबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। एक वक्त था कि हमारे यहाँ जब शादी कार्ड्स छपते थे ना उर्दू में, तो तब अक्सर ये हदीस लिखी होती थी, उर्दू में भी लिखी होती थी कि निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत से मुंह फेरा वो मुझसे नहीं। अब सुन्नतें भी टूटी और कार्ड भी इंग्लिश में आ गए। अब मैंने बहुत देर से कोई नहीं देखा कार्ड, शायद अभी भी होता हो, लेकिन आप देखें कि इस हदीस का पूरा टेक्स्ट क्या है। बस दफा हम आधा टुकड़ा किसी हदीस का पेश कर देते हैं और उसका पूरा मफहूम वाज़े नहीं होता। तो यहां से देखिए जो बात हमें पता चलती है कि इस सोच के साथ अनमैरिड रहना कि मैं अकेला रह के ज्यादा इबादत कर सकता हूँ और अल्लाह को खुश करता हूँ और बीवी बच्चों में पड़ गया या शौहर के तकाजे पूरे करने में पड़ गई तो मैं ज्यादा नेक हो जाऊंगी, ये गलत सोच है। यहाँ मैं एक छोटी सी बात करूंगी, एक तरफ तो शादी ना करना इस सोच के साथ कि हम जिम्मेदारियों में नहीं पड़ते, ये मर्दों का प्रॉब्लम होता है जब वो थोड़ा सा दीन के जाहरी खौल में आते हैं, इबादत का एक छोटा सा रंग चखते हैं, अभी उन्होंने भी पूरी अंदर से नहीं इबादत ली होती या दीन को असल नहीं समझे होते, तो वो बाद में बीवी बच्चों से फिर दूर रहना चाहते हैं और सिर्फ इबादत में वक्त गुजारते हैं। और दूसरी तरफ औरतों में मैंने देखा है कि अच्छी वाली शादीशुदा जिंदगी बसर कर रही होती हैं और दीन जब मिलता है, कुरान से शुरू हो गया ताल्लुक, कुछ क्लासेस लेने लगी, तो दिन ब दिन वो अपने शौहरों से दूर होने लगती हैं इस सोच में, नहीं जी हम तो बहुत नेक हो गए। एक ऐसी ही खातून की कहानी किसी मौके पे मेरे सामने आई कि वो कहती है कि मैंने पिछले ही पढ़ती हूँ तो मैं दूसरी पढ़ती हूँ तो मैं ये गंदे काम नहीं कर सकती। पहली बात है कि इस काम को आप गंदा काम नहीं कह सकते और ये हम सीखने के लिए बात कर रहे हैं इसलिए हमें सीखना ही चाहिए इस बात को। और दूसरी बात है कि ये कोई तकवा का मेयार नहीं है कि आप अपने दुरूद शरीफ पढ़ने या आप अपने इल्म को मर्द के लिए एक मुसीबत बना लें। फितरत पे रहिए, हर चीज को उसके वक्त पे रखें। रात रात को आती है, दिन दिन को आता है, गर्मी सर्दी अपने वक्त पे आती है। कोई दीन का काम करने वाला ये नहीं कह सकता कि मैं दिन रात दीन का काम कर रहा हूँ, गलत बात है। इस्लाम हमें एक बैलेंस लाइफ देता है। नियत बदल लीजिए, अब पढ़ाने बैठी हूँ ये नेकी का काम है, अब पढ़ रही हूँ ये नेकी का काम है, अभी घर जाके बच्चों को देखूंगी ये भी नेकी का काम है, फिर शौहर आएंगे उनको खुश करूंगी ये भी नेकी का काम है। मोमिन का फोकस एक ही होता है, अल्लाह की मोहब्बत, लेकिन वो डायरेक्शंस चेंज करता है। आप इसको यूं एक अपने नोट्स में माइंड मैप बना सकते हैं, बीच में एक डॉट लगाइए, वहां लिखिए अल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की रजा, जन्नत, जो भी लिखना चाहें। उसके बाद आप एक उसके इर्द गिर्द एक दायरा लगाएं। अब आप अगर चार सिमतें, शमाल, मशरिक, जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है, इसके चार को देखिए, तो दायरे पे जो भी चल रहा है उसकी मुख्तलिफ वक्त में डिफरेंट होगी ना डायरेक्शन। जैसे आप एक राउंड अबाउट में गाड़ी घुमाते हैं, तो अगर आपकी गाड़ी में वो डायरेक्शन लगा है तो वो फौरन बताएगा कि आप साउथ से इस तरफ जा रहे हैं। अब हर एंगल पे दायरे में आपकी पोजीशन फर्क है, लेकिन मरकज एक है। अब आप बिल्कुल 24 घंटे को इस तरह से समझिए कि 24 आवर का एक दायरा मेरे इर्द गिर्द लगा हुआ है। सुबह उठ के इस वक्त में पहले इबादत का कुछ हिस्सा है, तो आप समझें कि ये नॉर्थ टू ईस्ट आप जा रहे हैं अगर, तो आप थोड़ा से नॉर्थ ईस्ट की तरफ झुक गए हैं, 1 घंटा इसमें लग गया। उसके बाद 1 घंटा वो है जिसमें आप अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं, नाश्ता बना रहे हैं, शोहर के सामान को तैयार कर रहे हैं। अब आप अगर उस दायरे की रोशनी में देखें तो आपकी डायरेक्शन पूरा दिन घूमती रहती है, लेकिन आपका फोकल पॉइंट एक ही है। जब पुरकार या कंपस के अंदर के हिस्से को आप हटाते हैं ना, तो फिर दायरे पे दायरा नहीं लगता। करके देख लीजिएगा, जब हमारा दायरा टूटता है ना, अल्लाह की मोहब्बत से जरा से इधर होते हैं, सास को खुश करने के लिए काम कर रही हूँ, बस समझे आपका फोकल पॉइंट टूट गया। अब सारा दिन काम भी करेंगे, वो इबादत कोई नहीं बनेगी। शोहर को खुश करने के लिए, दिस एंड दैट, लोगों को खुश करने के लिए कि मेरा घर बड़ा अच्छा है, साफ है, इसलिए कर रही हूँ, फोकल टूटता है तो फिर इबादत टूट जाती है। अदरवाइज कह सकते हैं कि इस्लाम इतना खूबसूरत दीन है कि 24 घंटे को इबादत बना देता है। और इसके अंदर जो चीज़ है ना, जो एक सिरा तो हमने रखा ना अंदर पुरकार का, अगर आप मेरी बातें समझ रहे हैं, तो वो है अल्लाह की मोहब्बत का। वो जो दूसरा सिरा है ना पुरकार का, जिससे दायरा खींचते हैं, इसके साथ आप सुन्नत लिख लें। सुन्नत वो मैजिक स्टोन है कि जिस चीज को लग जाती है ना, तो वो काम हमारा इबादत बन जाता है। सुन्नतों की रोशनी में दिन रात को गुजारिए, अल्लाह के नबी के तौर तरीकों को सामने रखें, मोहब्बत अल्लाह की रखेंगे, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपको 24 घंटे का मुस्लिम होने का अजर मिलेगा। अगली बात, निकाह ना करने से मुआशरे में जबरदस्त फितना फसाद बरपा होगा। दलील, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हो कहते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब ऐसा शख्स तुम्हारे पास निकाह का पैगाम भेजे जिसके दीन और इखलाक से तुम मुतमईन हो, तो इससे अपनी बेटी का निकाह कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो जमीन में फितना और जबरदस्त फसाद बरपा होगा। इसे तिर्मिजी ने रिवायत जी। अब आप देखिए कि यहाँ किस फितने की बात है, बहुत ही खूबसूरत हदीस है। रियली आप देखिए कि हमारे कल्चर में लफ्ज फितने के साथ अमूमन क्या आता है, गोलियां चल रही हैं, नहाते शहरियों पे गोलाबारी कर दी गई, मोस्टली हम यही सोचते हैं ना फितने को। लेकिन ये फितना कौन सा है जो आज में चारों तरफ दिख रहा है, जहर अल फसाद वाली कैफियत है, कि जब बेटियों के रिश्ते नहीं किए जाते जबकि पैगाम आ गया। दो शर्तें हैं, नंबर एक दीन से मुतमईन हुए, और नंबर दो इखलाक। आज बहुत सारे लोग इस मसले में परेशान दिखते हैं, और वो क्या है कि हम क्या करें, हमने तो नेक दीनदार लड़का देख के शादी की थी। भाई आपने क्या देखा था, हमने देखा जी लड़का हाफिज़े कुरान है, और हमने क्या देखा उसकी दाढ़ी भी है, और दिस एंड दैट, जो भी एक जाहरी रिचुअल्स होते हैं। फिर क्या हुआ, बाद में पता चला जी शादी की, वो तो इतना सख्त निकला, वो तो पाबंदियां बड़ी लगाता है, वो तो ये शकी बहुत है, वहमी बहुत है, बातों में बहुत आ जाता है, और दिस एंड दैट। तो अब हमें किस बात की सजा मिली? तो जब भी कोई ऐसा इशू मेरे सामने आता है, तो मैं इनको कहती हूँ कि आपने इस हदीस पे गौर नहीं किया, मन तर दौना दीन हो को तो आपने ले लिया, लेकिन वह खुलुक हो नहीं लिया। देखिए, दीन का ताल्लुक अल्लाह के साथ होता है और खुलुक का ताल्लुक मखलूक के साथ होता है। आप किसी भी लड़के से अपनी बेटी की शादी या बहन का निकाह करना चाहते हैं ना, अगर वो दीनदार है, नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है, जो भी काम करता है, तो इंशाल्लाह ताला आप उम्मीद कर सकते हैं कि उसका अखलाक भी अच्छा होगा। लेकिन जब दीन का जाहरी लुबादा पड़ जाता है ना, और दुख के साथ कहना पड़ता है कि फी जमाना हमें ऐसे दीनदार ज्यादा दिखते हैं कि जिनके ऊपर जाहरी लुबादा है, वो क्या है कि नमाज, रोजा, दीन बहुत ज्यादा अल्लाह की तौफीक से होना चाहिए, लेकिन मामलात खराब है। अगर आप पूरे दीन को मुख्तलिफ हिस्सों में बांटे ना, मैं तफसीलात में नहीं जाती, आप फिर एक दायरा लगा लें, उसको दो हिस्सों में काटे, शतर, जैसे एक इधर और इधर, आधे दायरे के ऊपर लिख लीजिए हकूकुल्ला, इसमें आपका अकीदा भी आ जाएगा और बाकी चीजें, और बाकी जो हाफ है ना उसको आप मुआमलात लिख दें। अदीनु मुआमला, यह हदीस का खुलासा है कि किसी का दीन देखना है ना वो कैसा है, तो देखो उसकी लोगों से डीलिंग्स कहती हैं, मामला कैसा है, धोखे तो नहीं देता, चुगलियां तो नहीं करता, इखलाक तो खराब नहीं है। और बस दफा सिर्फ दीन देख लिया जाता है। अच्छा दूसरा हमारे यहाँ क्या है, कुछ लोग आते हैं मशवरा करने के लिए, भाई बेटी का रिश्ता आया हुआ है, क्या है, वो लड़का बहुत अच्छा है, कैसा है, बड़ा शरीफ है, बड़ा अच्छा है, वो ऐसा है वैसा है, और उसका कारोबार भी और दुनियावी चीजें भी अच्छी हैं, तो मैं उनसे कभी पूछूं कि अच्छा नमाज पढ़ता है, ये तो नहीं पूछा। अच्छा जी वो उसके क्या है, उसकी सोच कैसी, ये नहीं पता। तो वहां के खुलक अच्छा है, ये दो हिस्से हैं। कुछ लोग जैसे आम फीस मानना, हमारे यहाँ जो रिश्ते होते हैं ना वो खुलक की बुनियाद पे होते हैं। अमूमन देखे हमारी सीधी सादी खवातीन यही बात कह रही होती हैं कि वो जी लड़का बड़े अच्छे शरीफ घराने का, उधर शराफत क्या है कि नमाजें भी पढ़ लो, फिल्में भी देख लो, अल्लाह को भी खुश करो और दूसरों को भी नाराज ना करो। इस पे हमने लेक्चर में बहुत तफसील से बात की है कि नेकी की रूह क्या है, उसमें हमने चार किस्म के लोगों का जिक्र किया था, आप वहां से बेनिफिट लेना तो बाद में ले लें कि किस तरह से दीन आज मुख्तलिफ खानों में बटा हुआ है। आइडियल सिचुएशन क्या है, पहली बात है आज आपको अपने बच्ची का रिश्ता करना है या आपको अपनी बहन का करना है, तो पहले आपको वो आइडियल सोसाइटी देखनी पड़ेगी कि जो दीन सीख रहा है ना उसने कहाँ से सीखा है। दुख की बात है कि आज हम दीन के नाम जो सिखा रहे हैं ना वो भी बैलेंस नहीं सिखा रहे हैं। अल्लाह की मदद कभी नहीं आएगी अगर आप सिर्फ दीन का एक हिस्सा लोगों को बताएंगे तो दूसरा नहीं बताएंगे। देखिए ये कभी हो नहीं सकता कि किसी का दीन अच्छा हो और खुलक अच्छा ना हो। मैं इस बात को कसमिया तौर पे कह सकती हूँ कि जहां सच्चा दीन होगा ना, जो अल्लाह से अच्छा होगा ना बंदा, वो बीवी से भी जरूर अच्छा होगा, जो माँ के साथ अच्छा है वो बीवी के साथ भी अच्छा होगा। तो आज चूंकि फिर हमारा आइडियल दौर नहीं गुजरा इसलिए ये प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन यहाँ कभी दीन को गाली ना दें। बाज लोगों को मैंने देखा है इतने भी दीन के खिलाफ एग्रेसिव हो जाते हैं कि ये सोचने लग जाते हैं कि अब हमें कोई बेदीन ही लेना है क्योंकि जी दीनदार सख्त होते हैं, तो बात नहीं है। असल बैलेंस दीन हो, और अल्लाह की तौफीक से हम यहाँ आपको इस फोरम पे जितना भी दीन का इल्म सिखाते हैं उसका एक मुश्तरिक पॉइंट नोट कीजिएगा, बैलेंस लाइफ। ना तो हम आपको नेकियों के नाम पे ये कह सकते हैं कि आप सब कुछ दुनिया का छोड़ दें, और ना आपको ये कह सकते हैं कॉम्प्रोमाइज जो सब कर रहे हैं आपके लिए भी जायज है क्योंकि सब करते हैं। कुरान और सुन्नत की तराजू को हाथ में लेकर बैलेंस लाइफ गुजारिए, और वही इंशाल्लाह ताला हमारी फितरत की पुकार है। जो दीन के नाम पे बहुत सख्त दीन देते हैं लोग उनसे भाग जाते हैं, और जो बहुत नरम दीन दे देते हैं उनके साथ अल्लाह की मदद कोई नहीं आती। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि जब हम नेकी को भी सामने रखें, दीन को भी रखें, तो हमें कम से कम वहां कोई धोखा ना हो, वरना दीन बदनाम होता है। और अगर आपके नाम के साथ कहीं दीन का लफ्ज लग गया तो आप अपने मामलात में 10 दफा सोचें कि अगर मैं अब किसी के साथ बुरा मामला करूंगी तो लोग मुझसे नहीं मेरे दीन से मत परोंगे। अक्सर लोग कहते हैं आजकल के तो दीनदारों से बेदीन अच्छे, आजकल के मुसलमानों से तो गैर मुस्लिम अच्छे। ये सारी कैफियत जो है हमारी कमी और कोताही का जरिया, वरना दीन अपनी सूरत में बहुत खूबसूरत है। अच्छा आखिरी बात इस हदीस पे कि फितना आज आपको दिख रहा है, जब रिश्ते मौजूद हों तो ना किए जाएं, तो ये जो फितने हैं ना बाहर करप्शन के, और इतनी लड़कियां अनमेरिड बैठी हुई हैं और इतने लड़के बेचारे जो है माँ बाप उनकी शादी नहीं करे, ये फितना है। आज यकीन कीजिए अगर सिर्फ एक साल दे दिया जाए किसी एक इंसान को जो दीन की सही समझ रखता हो, बैलेंस दीन जानता हो, और उसको कहा जाए कि पूरी दुनिया में जितने भी लड़के लड़कियां हैं, हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं, दूसरों को तो एक तरफ कर दें, उनके आप जोड़ मिला दें, तो यकीन करें शायद ही कोई अनमेरिड रह जाए। अक्सर लोग जो ये शिकवा करते हैं रिश्ता नहीं मिल रहा, उनकी करीब की नजर ही कमजोर होती है, करीब रिश्ता मौजूद होता है लेकिन उनको दूर का अमेरिका का चाहिए, दूर से रिश्ता आता है। आगे बात करेंगे इसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला। अगली बात है निकाह ना करने से बदकारी में पड़ने का खदशा है, पीछे हम हदीस पढ़ चुके हैं इस पे, निकाह के बगैर दीन नामुकम्मल रहता है। तो खुलासा क्या हुआ इस बात को सुन के, आज आपको एक बहुत खुशी का एहसास होना चाहिए कि आज तक तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट था ना कि नमाज पढ़ना दीन है, रोजा रखेंगे तो आप इबादत करें, आज से आप में से जो भी अनमेरिड है इस सोच के साथ अपनी शादी के लिए तैयार हो कि ये मेरी इबादत है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम में से जो सिस्टर्स मैरिड हैं वो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इस शादी ने हमें इबादत की कैफियत दी हुई है। जब हकूक और फराइज का अच्छी तरह से बैलेंस रहता है तो बेहतरीन जिंदगी होती है। आपको एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दिखाते हैं कि इस्लाम में शादी का क्या तस्वुर है।
Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu would protect the secret of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, Hafsa, was married to one of the Sahaba who has fought in the Battle of Badr. Later on he died. So Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu wanted his daughter to marry from the best. So he went to Uthman ibn Affan and he offered his daughter to him. He told Uthman ibn Affan radiallahu anhu, "Do you want to marry my daughter Hafsa?" Uthman ibn Affan radiallahu anhu said, "Let me think about it." He later on came back and said, "Qad bada li an la atazawwaja yawmi hadha." I've decided that I don't want to marry at this particular time. I'm not interested in marriage now. Umar ibn Khattab radiallahu anhu might have disliked that a little bit. So he went to Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu and he told him, "I'm offering you my daughter if you want to marry her." Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu did not respond. Didn't say anything. Umar ibn Khattab said, "I was even more upset with Abu Bakr than I was with Uthman. At least Uthman came and gave me an answer, even though it was a no answer, but at least he gave me an answer." But Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu was silent. I offer my daughter to him, he doesn't give me an answer. A few days later, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam marries Hafsa. Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, after the marriage, he came to Umar ibn al-Khattab and said, "I think that you were upset with give you an answer." He said, "Yes, I was upset with you." Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu said, "The reason why I didn't respond, heard Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mention her, and I wasn't going to be the one who would disclose the secret of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And if he did not marry her, I would have married her." So Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu said, "I felt that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, by mentioning her name, was interested in her. And that's why I kept quiet, to wait and see what will happen. If Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam does not marry her, I would have married her. But I am not going to be the one who will disclose the secret of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam." Wanted to have a relationship with the four Sahaba radiallahu anhum. So you find that he married the daughter of Abu Bakr to Farooq. And then he married two of his daughters to Uthman ibn Affan. First he married him one, and then when she passed away, he married him the other. And there's a statement that says, Allah, how strong the narration is, but if I had 99 daughters, I would marry them to Uthman. If one of them died, I would keep on marrying him. That is how much love Rasulullah ﷺ had for Uthman ibn Affan, radiallahu anhu. And then he married his daughter, Fatima, to Ali ibn Abi Talib. So now, Rasulullah ﷺ has a relationship, family relationship, with the four Khalifa, radiallahu anhu. Two things here to note. Number one, marriage in those days was very easy. Very easy. Now we have complicated marriage so much, we have placed so much bureaucracy in marriage, that unfortunately haram became easier than halal.